वैल्यूज एंड पावर्स राजयोग द्वारा। दोनों चीजों की हमने देखा ना, आपके क्षेत्र में भी कि वैल्यूज को कितना कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। काम को आगे रखते हैं, पैसे को आगे रखते हैं, तो वैल्यूज पावर सब पीछे चली जाती है। कहते पैसे से हम सब खरीद सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो क्वालिटीज है वो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। और जितना आपका ध्यान बाहर की ओर खरीदने में रहेगा ना, उतना आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी। उसको तो चार्ज ही नहीं कर रहे, सिंपल बात है ना। लॉयल्टी अपने अंदर है, लॉयल्टी खरीदना थोड़ी है। हाँ, वो आज की परिस्थिति है ना, वो काफी समय के अभ्यास से बनी है, ठीक है। तो अभी हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हमने अभ्यास किया है ना पहले से, उसी की ये रिजल्ट है। अब ये प्रॉब्लम की बात करके भी क्या फायदा, अब इसमें से निकलना है। तो पहला कौन निकलेगा, वर्कर की आप? हाँ, सिंपल बात है। दूसरे का सोचो ही नहीं, बीवी का भी नहीं सोचना, किसी का भी नहीं। हमको खुद को निकलना है, खुद को आत्मा को चार्ज करना है। कभी कभार अनुभव ऐसे होते बिना बोले सामने वाला चेंज हो जाता है, एटलीस्ट वो परिस्थिति के लिए लॉयल बन जाता है। हजार के साथ लॉयल नहीं होगा, आपके साथ बन जाएगा। ऐसे रास्ता निकालना पड़ेगा ना, भले जंगल है रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हुए आप धीरे धीरे अपना रास्ता खुद निकालेंगे, है ना। अच्छा, आपको देख के कितने लोग बदलेंगे बताओ? आप बदल गए, समझो आप बदल गए। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, प्यार सब आ गया आपके अंदर। आपको देख के कितने लोग चेंज होंगे? वो पास्ट का अनुभव है। अगर आपके अंदर ये सब आ गया तो मैक्सिमम 5, 10, 15, 20, बाकी हजारों प्रेरणा ले सकते, लेकिन बदलने वाले कम होंगे। तो हम एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखे भाई, करते रहे। जिसको बदलना होगा वो बदलेगा, और जिसको प्रेरणा लेनी होगी वो प्रेरणा लेगा, है ना। प्रेरणा लेने वाला उस समय आपको मदद कर लेगा, और बदलने वाले तो दूसरों को मदद करेंगे, है कि नहीं। कितना फर्क पड़ेगा, हम कितना एक बॉक्स में आ गए ना। नहीं, हम सब एक बॉक्स में नहीं है, चारों तरफ से सब बंद है ऐसा लग रहा है। अब तो यही लग रहा है, सफोकेट हो रहे, ऊपर से कोई बंद न कर दे, हम जिएंगे कैसे। पर अभी तक ऊपर का खुला है, और अगर आपका ध्यान ऊपर की ओर नहीं है तो वो धीरे 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 इतने नजदीक आ जाएंगे ना चारों तरफ के, उसी में खत्म। तो अभी भी ऊपर का बॉक्स के ऊपर का जो साइड है वो खुला है, तो थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये रिलेशनशिप्स है, ये कामकाज है, ये पर्सनल लाइफ है, ऐसे चार दिशाएं हैं बॉक्स के। और रोज दिन प्रतिदिन ना वॉल नजदीक आती जा रही है, जितने प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं लाइफ में उतना वो टाइट होता जाता है, स्ट्रेस और वो सब प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब होता रहता है। वो अभी भी ध्यान ऊपर नहीं है, ध्यान इसी में है कि इसको कैसे सॉल्व करूं, अभी इसको कैसे सॉल्व करूं, अभी इधर कैसे टाइम दू। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पर अभी भी बॉक्स का ऊपर का साइड खुला है। आज ऊपर गए थे ना, अभी मेडिटेशन से ऊपर गए थे ना, ऊपर पहुंचते ही कोई भी प्रॉब्लम याद आता है, नहीं याद आता है, ऊपर केवल मैं और शिव बाबा, मैं आत्मा और शिव बाबा, और हम पावर ले रहे हैं। तो यहां खर्च कर रहे हैं, यहां ले रहे हैं। खर्च करना मना नहीं है, पर हो तो खर्च करे ना, तो लेने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, कभी वो भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बाबा को हेल्प करनी पड़ती है ऊपर से, लेकिन जब हम बैठ के मेडिटेशन करें तो हम क्यों ना ऊपर जाएं, हमारा घर है, हमारा बाबा है ना, कौन मुझे रोकेगा जाने के लिए, है ना। वहां तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए नहीं है ना, सूक्ष्म वतन पार नहीं रखा है कुछ भी, हमको अंदर से दृढ़ होना है। भाई साहब आपको पैर के नीचे कुछ चाहिए? श्योर? हाँ तो ये दे दीजिए ना उनको। हाँ अच्छा जी, अच्छा तो अभी आगे बढ़े। ये हमने क्या देखा कि अभी हम ये दो के कॉम्बिनेशन है, क्या देख रहे हैं? एक है इनेट सेल्फ, माना आंतरिक जगत, और नीचे वाला है जो दुनिया से हमें मिला जन्मते ही। तो जन्मते ही पेरेंट्स संबंध मिले, रोल प्ले करने को मिला, जन्म से चीज वस्तु, खिलौने, खाने पीने का ये सब मिला, फिर धीरे धीरे स्टडी करने लगे तो धीरे धीरे अपने अंदर कोई ना कोई योग्यताएं अपने अंदर बढ़ने लगी, कोई सब्जेक्ट में मास्टरी होने लगी, वो सब मिलने लगा। साथ साथ संबंधों के साथ तो हमारा काम चलता ही रहा, और फिर पोजीशन भी मिली, बहुत मेहनत किया तो पोजीशन मिली, फिर हमको बहुत सारी प्राप्तियां हुई, उसका अवार्ड मिला, उसका एप्रिसिएशन मिला, है ना। कहीं प्रेसिडेंट बने, कहां वाइस प्रेसिडेंट बने, कोई क्लब के इधर उधर सोसाइटी, फिर हमारी मान्यताएं भी हमने यहीं बनाई। किस आधार से बनाई अपनी मान्यताएं बताइए? अपनी मान्यताएं आपने किस आधार से बनाई? सब आगे आ जाओ। अपनी मान्यताएं आपने किस आधार से बनाई? सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ, जगत से सुन के, वन पॉइंट। सेकंड, अपने अनुभव से, अपने पूर्वजों की जो प्रथा है उस अनुसार। तो आपका क्या है इसमें? ओरिजिनल क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहां से मिला ना, कहने का भावार्थ यहां से मिला। जो भी आपकी मान्यता है ना, वो सब यहां से मिली, जन्म बाय जन्म। कुछ कुछ होता रहा और आप मान्यता बनाते गए इसी कारण से, जैसे आपने बताया। वो सब इधर ही खेल चलता है भाई साहब, हर प्रकार का दुख सुख जो भी है, आपको जो करना है सारा पृथ्वी है करने के लिए। अब जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा है, बाकी तो हर एक अपनी डिसीजन लेकर चलते रहते हैं। कौन सुनता है आजकल एक दूसरे का? कोई नहीं सुनता। तो ये सब बाहर की चीजें हैं। जब आप यहां आते हो ना, तो आपको एक और जगत मिलता है, आंतरिक जगत। बोलते नहीं अभी अंदर जाओ अभी बाहर मत रहना तीन दिन, अंदर जाओ, अंदर को खोजो, क्या है आपके अंदर। तो बहुत सारा मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, न अच्छा भी मिलेगा, है कि नहीं। ऐसी जगह पर जहां साइलेंस होती है, एकांत मिलती है, तो बहुत कुछ दिखाई देता है अपने अंदर का, अगर चाहो तो। चाहो तो इतनी जगह मिलने पर भी अगर आपके अंदर संस्कार है कि आप बाहर की ही बातें करना चाहते हो, तो आपको कोई बदल नहीं सकता। इधर चांस मिला कि अपने से बात करो, अंदर झांको। कहां झांकना है? अंदर हार्ट में नहीं, किडनी में नहीं, उधर किधर भी नहीं झांकना है। मन, बुद्धि, संस्कार, आपकी वृत्ति, कौन सी वृत्ति से, इंटेंशन से आप जी रहे हो, काम कर रहे हो, ये सब समझने के लिए ये स्थान होता है। और वही चीज अगर आप घर पे करोगे तो धीरे धीरे आपका घर ऐसा ही बन जाएगा, वातावरण के हिसाब से बोल रही हूं, वाइट भी करने की जरूरत नहीं है, पर वृत्तियों के हिसाब से बनता जाएगा। पर अंदर झांकेंगे नहीं तो कैसे होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आंतरिक जगत में क्या बोलते हैं, आत्मा, स्पिरिट, एसेंस, वैल्यूज। और आत्मा को कैसे देखा जाता है, पॉइंट माना, ज्योमेट्री में पॉइंट सबसे छोटा होता है, इसीलिए उससे छोटा कोई शब्द नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट है। अब बल्ब देखा होगा, पूरे बल्ब में लाइट होता है, लेकिन एक जगह है ना, एक पॉइंट होता है बल्ब में जहां से वो लाइट आ रही है, तो पॉइंट ऑफ लाइट और एनर्जी, ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा को कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता। और उसमें क्या है, उसके ऊर्जा में क्या है, जो हम हमेशा बातें करते रहते हैं मन के बारे में, और मन क्या काम करता है वो हमको पता भी नहीं था, बस ऐसे ही चलता रहा चलता रहा, हम ही उसको फॉलो कर रहे हैं, वो हमको नहीं फॉलो कर रहा है, हम ही उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हो गया है ना। मुझे घोड़ा चलाना चाहिए, उसके जगह घोड़ा ही मेरे को चला रहा है, ऐसे हो गया। तो मन, बुद्धि और पर्सनैलिटी मना संस्कार, आदतें जो आपने अपने अंदर बना दी, उस प्रकार से अभी हम सब यूनिक है। हर एक आत्मा में ये तीन पैकेज, मन, बुद्धि, संस्कार में कोई है जुड़वे है इधर? मन, बुद्धि, संस्कार में कोई जुड़वे बैठे इधर? दिखने में एक जैसे होंगे, जुड़वे हो ही नहीं सकते मन, बुद्धि, संस्कार के कॉम्बिनेशन में, सब अलग है। तो हर एक को अपना ही ढूंढना पड़ेगा ना, मैं दूसरे को ही करेक्ट करती जाऊं क्या फायदा? यहां चांस से आप अपने को देखो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप पूरे सोसाइटी के एकम प्राणी हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। अपनी इंपॉर्टेंस को किसी की भी ग्लानी की बातों में कम मत करो, पर साथ साथ में अहंकारी भी नहीं बनना है। अहंकार भी बाहर से आता है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, मेरे को बहुत अनुभव है, मैं इधर पोजीशन में बैठी हूं, ये सब अहंकार की बातें, वो भी बाहर से आता है, आता फील अंदर होता है लेकिन आता बाहर से। अंदर में है शांति, अंदर में है पवित्रता, अब वो छू भी नहीं रहे हम, बताओ। काली मंदिर में जाएंगे तो एक सेकंड के लिए फील होगा, जब वो फूल देगा ना पुजारी हाथ में, मंदिर के बाहर निकले कि वो सब गया, है ना। तो इसीलिए इनेट सेल्फ, राजयोगा किससे कनेक्टेड है, राजयोगा ये नहीं कहता है कि ये बाहर का सब छोड़ो, इसके बीच में अपने आप को महसूस करना सीखो, और जो बाहर की चीजें हैं उसको राइट वे में यूज करो, और समाज के कल्याण के लिए भी यूज करो। ये बताया है इसमें। एनी क्वेश्चन इस चित्र पर, एनी क्वेश्चन? समझ गए, क्लियर है? तो ये दो कौन है, हम ही है ना। तो ज्यादा टाइम हम किधर देखते हैं, बाहर देखते हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी अंदर भी झांकेंगे कितनी बार दिन में, इधर से बाहर जाके मत बोलना अरे टाइम ही नहीं मिला, बहुत बिजी था। आपको अपने अंदर झांकने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, आप ही मालिक हो। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम कैसे काम करते हैं, हम अपनी स्मृतियों से काम करते हैं, अगर मैंने वो बाहर की जो चीजें है ना उस स्मृति से केवल काम किया, समझो मैंने अपने को बहन समझ के काम किया, या मैंने अपने को अगर मैं टीचर हूं तो टीचर समझ के काम किया, या मैं मां समझ के काम किया, या मैं कोई पोजीशन का या अचीवमेंट के दृष्टि से मैंने काम किया, है ना, तो वो कॉन्शियसनेस बन जाती है, उसको स्मृति बोलते हैं। अब इसमें एक बार भी दिन में इस स्मृति से काम होता है कि मैं आत्मा हूं? बिल्कुल नहीं है। तो यहां दिखाया है जैसी आपकी स्मृति होगी वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे जैसे आपके विचार चलते जाएंगे आपकी वृत्ति निर्माण होगी। एक वृत्ति निर्माण होती है ना, मींस एक हमको वो विचारों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, समझा, विचारों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है तो वो वृत्ति बन जाती है फिर, और फिर वृत्ति से हमारी देखने की दृष्टि या नजरिया बन जाता है, हमारी वृत्ति के अनुसार ही हम देखेंगे। अभी जो आप सुन रहे हो या देख रहे हो, आप प्लेन इंटेलेक्ट से नहीं देख रहे हो सुन रहे हो, आप अपनी वृत्ति से अपने नजरिए से देख रहे हो सब। तो ये अभी खेल चल रहा है, हर एक अपने नजरिए से बात करता है, अपने नजरिए से देखता है, फिर उससे क्या होता है वैसा ही काम करता है, फिर अपने नजरिए अनुसार फिर वैसा काम करता है, फिर वैसी ही मन की स्थिति बन जाती है। आपने जैसा काम किया होगा वैसी मन की स्थिति बन जाएगी। किसने बनाई? नहीं, उस समय तो आप ऐसे बोलते हो मैं अपने भाई के कारण बन गया, मेरे साथ ऐसा हुआ एक्सीडेंट इसीलिए मैं ऐसा बन गया। हम तो हमेशा दूसरा का ही कारण बताते, पर ये सर्कल आपको सिखाता है जो होता है आपके खुद के कारण से होता है। तो दूसरों को दोष देना छोड़ दो, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी चेंज आएगा। हाँ, उसके बाद मन की स्थिति जो बनेगी ना तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप उसी अनुसार वापस करेंगे। आप सोचेंगे नहीं, आप अपने मन बुद्धि को कोई काम नहीं देंगे, आप सीधा जो किया जो आपका स्टेट ऑफ माइंड बना उसी आधार से उसको ही रीइन्फोर्स करेंगे, तो वो आपकी स्मृति बढ़ती जाएगी। अभी पहली बार मां बने तो नया लगा, फिर एक महीना छह महीने के बाद बार बार वही स्मृति से काम किया, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं। फिर वो बच्चे के प्रति आपकी वृत्ति, आपकी स्थिति, आपका देखने का नजरिया सब माँ माँ माँ। आप अकेली माँ थोड़ी हो, और पूरी जिंदगी भर क्या माँ ही रहोगी बेटे की? नहीं होता ऐसा। तो ये जो रोल में हम फंस जाते हैं ना, उसकी जगह अगर हम सोचे कि मैं आत्मा अब ये रोल बजाने जा रहा हूं, और मुझ आत्मा में जो खजाना है उसके साथ मैं रोल बजाने जा रहा हूं, तो कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं? पहले नहीं पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पड़ेगा। हार जाओगे तो खलास है ना। अब देखिए, ये सारी हमारे अंदर के खजाने हैं, ओके? बहुत हमारे अंदर खजाना है, बहुत सारा। इसको कहीं बाजार से लाना नहीं है, कोई आपको कोई कोच, कोई लाइफ कोच भी आपको ये नहीं दे सकता। भगवान भी तभी देगा जब आप उस मन से बैठे होंगे, तब तक भगवान भी नहीं देता है। ही इज एन एक्सलेंट बिजनेसमैन, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन ऐसे नहीं देता। सेंसिबल है ना? कोई भी चीज आपको दुनिया में करना है अगर आप सोच समझ के नहीं करोगे तो कहां पहुंचेंगे? तो भगवान तो इसमें सबसे एक्सपर्ट है कि मुझे देना पड़ेगा, तो वो सोच समझ के लेगा ना और देगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है, अगर हमको अच्छा जीवन, प्राप्ति स्वरूप जीवन जीना है तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी होगी, हमें खुद अपने जीवन का लीडर बनना होगा, अपने जीवन का कैप्टन बनना होगा, समझा? और कैप्टन को सही निर्णय लेने पड़ेंगे कि नहीं। एक बार क्या हुआ, जहाज था सागर में, जहाज चल रहा था और वो जहाज है ना, उसपे आर्मी का जहाज था, तो आर्मी का जहाज था ना, तो वो जो कैप्टन था ना, वो बहुत मना शक्तिशाली था, तो अचानक बहुत तूफान आया और उस तूफान में उसको सामने से ऐसे लाइट दिख रही है, तो उसको लगा कि कोई सामने से आ रहा है, तो उसने मैसेज भेजा कि जो भी तुम सामने हो 90 डिग्रीज हट जाओ, हमारा जहाज आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद सामने से मैसेज आया, आप 90 डिग्रीज हट जाओ। तो उससे बोला, अरे मैं तो वॉर का ये हूं और मेरे को वॉरशिप है ये, और मेरे को कोई कह रहा है 90 डिग्रीज हट जाओ, ऐसा कैसे? फिर वो बोलता है, मैं वॉरशिप से बोल रहा हूं, आप 90 डिग्रीज हट जाओ। थोड़ा आवाज बड़ा हो गया वहां से सामने से, कृपया आप 90 डिग्रीज हट जाएंगे तो अच्छा होगा, सामने से जवाब आया। ये तो क्रोधित हो गया और एकदम धमकी दे दी कि अभी तू नहीं हटेगा ना तो देखना। सामने से आवाज आया, मैं दीवा डांडी पे हूं, लाइट हाउस, दीवा डांडी होती है ना सागर के पास, आप कितना भी इधर आओगे नुकसान आपका ही है, आप हटो, तूफान के कारण आपको नजर नहीं आ रहा है कि मैं दीवा डांडी पे हूं, किसको हटना पड़ेगा? वॉरशिप हो कुछ भी हो, उसको ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के कैप्टन बनकर सही निर्णय लें। तो सही निर्णय लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले सही निर्णय हमको लेना है, वो काम है, वो निर्णय लेने का काम होता है। तो अगर हमको सही निर्णय लेना है तो मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए? प्रज्ञा। ओके, उसके पहले प्रज्ञा कहां से मिलेगी? हाँ, सबसे पहला है कि आपको सुनना होगा। अगर वो भाई पेशेंटली पूछता कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे को समझाओ, तो वो कहता, तो वो समझ जाता कि भाई इतना गुस्सा होने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। हम कितनी बार ऐसा करते हैं, कोई सुना रहा है और हम तो अपनी सोच में मग्न होते हैं। किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसको बीच में काट के जवाब देना चाहते, पूरी बात सुनते भी नहीं है। ऐसा ही होता गया, खुद के फील्ड में भी ऐसा हुआ। कोई चाहता ही नहीं है कि अपना नॉलेज अपडेट करे जिस क्षेत्र में है, जो चल रहा है चलने दो, ऐसा होता है ना, जो चलना है चल दे दो, 9 to 5 या जो भी, 9 to 6 या 14 hours जो भी है, लेकिन अपडेट जिस फील्ड में हम है, अपडेट अपने को करना वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में डेली कॉन्वर्सेशंस में भी अगर आपको सही जवाब देना है तो रिएक्शन नहीं करना है, और अगर रिएक्ट नहीं करना है तो सुनना है। अच्छा, सुनने के लिए कौन सा गुण चाहिए बताओ अभी? चलो, सुनना तो एक अपने अंदर की वृत्ति हो गई कि भाई ये सुनने वाला इंसान है, सुनेगा तो एटलीस्ट समझने की कोशिश करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, उसे बात करना ही फोकट है। तो सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या चाहिए? वेरी गुड, धीरज चाहिए, और क्या चाहिए? टॉलरेंस चाहिए, और क्या चाहिए? सोचो, हम क्यों सुन नहीं पाते हैं? एकाग्र नहीं है, धैर्य की कमी है। और कुछ? पहले वहां होंगे तो सुनेंगे ना, शरीर से तो इधर बैठे होंगे पर मन से अभी भी इधर नहीं है तो कैसे सुनेंगे, है कि नहीं? तो सुनने के लिए, बेहतर सुनने के लिए केवल कान की जरूरत नहीं है, अटेंशन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट की जरूरत है। कितने गुण है देखो एक ही चीज में, और ये गुण कहां है? सब आत्मा में। हमने लॉकअप थोड़ी किया है, आत्मा में हम यूज नहीं कर रहे। धीरज, एकाग्रता, वहां पर उपस्थित रहना मानसिक रूप से, और साफ भी तो चाहिए, मन साफ भी तो चाहिए सुनने के लिए। उसके बारे में ऑलरेडी हमने सुना है बहुत, और वही कचरा लेके आ रहे हैं उसको, उसके सामने ब्रह्मा कुमारियां ऐसा करती है, ब्रह्मा कुमारी तो वैसे करती है, वो है अंदर और आप यहां सुन रहे हो, पूरा सुन नहीं पाएंगे, है ना? पूर्वाग्रह बांधे हुए है बहुत सारे बिलीफ्स, वो भी बीच में आते इसलिए सुन नहीं पाते। सुना? इसीलिए अगर लिसनिंग में इतने सारे गुण है, पता है? और इसको शक्ति कौन सी कहती है मालूम है? लिसनिंग में भी शक्ति समाई है। लिसनिंग माना और सब जगह से अपने को विड्रॉ करो और फिर सुनो, और सब तरफ से। और मन तो अभी एक सेकंड में अमेरिका चला जाएगा, कोई वो स्पीकर के पास चला जाए, हाँ वो भी ऐसी बात कर रहा था। अरे किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं रहो, तब भी जाके आपको कुछ तो मिलेगा, खजाना जो आपके अंदर ही है, यहां से नहीं, जो आपके अंदर ही है आप डिस्कवर करेंगे। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी। तो उसके पीछे का पावर है पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ माना संकीर्ण करना अपने आप को। बच्चा, बच्चा कैसा होता है मां के गर्भ में, उसके शरीर का शेप कैसा होता है? एकदम ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, बिल्कुल संकीर्ण। ऐसे ही कछुआ देखा है? कछुआ जब अपना काम करता है तब क्या करता है? सारे अंग बाहर निकालता है, और जब उसका काम पूरा हो गया संकीर्ण विड्रॉ करता है। वो मरा थोड़ी, सबसे ज्यादा जीता है, 230 इयर्स जीता है ये कछुआ। इमेजिन ये पावर से कितना जीवन मिलता है उसको, पूरा अंदर संकीर्ण। फिर अगर कोई दुश्मन भी आएगा ना, वो दुश्मन भी उसको कुछ नहीं कर पाएगा, इतना प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। ऐसे अगर हमको सुनना है तो हमको हर तरफ से संकीर्ण हो जाना पड़ेगा और अटेंशन एक ही जगह रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई गलत बात सुना रहा है, देयर कम्स द दुश्मन, कोई गलत बात सुना रहा है तो क्या करेंगे? संकीर्ण हो जाएंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, एक कान से रख के दूसरे कान से निकाल देंगे। अपना थोड़ी कोई डब्बा कचरे का डब्बा है, जो भी कोई बोले सुनते रहो, है कि नहीं? तो इसीलिए लिसनिंग में बहुत, सुनने में बहुत आपकी योग्यता भरी हुई है। सबसे पहली बात जीवन की सुनने की होती है। बच्चा बोलता भले है लेकिन पहले किस में शार्प होता है? सुनने में। फिर बोलना शुरू करता है कि पहले बोलना शुरू करता है फिर सुनता है? बच्चा क्या करता है? पहले सुनता है। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम जीवन का, हर स्टेप पे, हर पीरियड में, हर आयु में, लिसनिंग। सुनना, फालतू लगे छोड़ देना, वो आपके ऊपर है, काम का है अपने अंदर जमा कर लेना। मेडिटेशन से वो पावर तो आएगी ना। आपने देखा होगा बीच बीच में गीत बजता है, यहां एक मिनट का भी बजता है, तीन मिनट का भी बजता है, वो क्या है? वो कछुआ है ना, काम कर रहा है और वो गीत बजता है, तो वो अपने अंदर संकीर्ण। शिव बाबा के पास चार्जिंग चालू हो जाती है, फिर बाद में जैसे गीत पूरा हुआ फिर अपने काम में जाएगा। हम सब कछुए इधर सुना, इसलिए आपको लगता है ऐसा कैसे रहते हैं लोग, इतनी आवाज भी नहीं आती ना, कितने लोग रहते हैं यहां पर, इतनी आवाज भी नहीं आती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग ली हुई है कभी आवाज में आने का, कभी संकीर्ण होने का, है ना। तो उससे अपनी बचत हो जाती है ऊर्जा की, कितनी बचत हो जाती है। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ने अपनी एनर्जी को बचाया, तो वो और देना चाहते हैं, फिर वो और देना चाहते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी अपनी जमा होती है ना, जितना अपना खजाना जमा होता है ना, अपना भविष्य उज्जवल होता है, सब मिलेगा भविष्य में। आपकी जितनी एनर्जी जमा हो गई ना इस जन्म में, आपको सब मिलेगा और कोई चीज दुख नहीं देगी आपको, गारंटी है। अभी तो जो मिलता है वो सुख भी देता है और दुख भी देता है। तो समझ में आ गया सुनना। दूसरी बात, गॉसिप ये भी सुनते हैं लोग बहुत, किसी की भी बात है, मालूम भी नहीं वो व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, शाहरुख खान, उसकी बातें चालू कर देंगे, एक को सुनाएंगे फिर वो दूसरे को सुनाएगा, तीसरे में तो बात ही बदल जाएगी। ऐसे करते हैं ना मीडिया वाले, कितनी बातों को बदल देते हैं। लिसनिंग इसको नहीं कहा जाता है, है ना। तो इसीलिए कौन सी चीजों के लिए कान बंद करना है, कौन सी चीजों के लिए कान खुले रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सुनना जरूरी नहीं है। अभी देखो दो तीन लोग चले गए, शायद उनको अभी कोई और इंपॉर्टेंट काम फील हुआ, तो उनको लगा कि नहीं अभी मुझे जाना पड़ेगा, वो चला गया। उसने अपनी जजमेंट ली क्योंकि कोई चीज उनकी प्रायोरिटी में आ गई, तो उसका अपना डिसीजन है, उसमें गलत है नहीं गलत है वो बात नहीं है, वो जजमेंट ही नहीं है, पर समझा ना ऐसा होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मुझे सही सुनना है, सही है, उल्टा सुल्टा नहीं बाबा, सही सुनना है, सही अर्थ में सुनना है, तो मुझे वहां उपस्थित रहना होगा। सेकंड, हमारी जो योग्यता है वो है अवेलेबिलिटी, अपनी उपस्थिति। कितने लोग आते हैं ना, उनको खाली अपने सारे दुखड़े बताने होते हैं, उनको अपने पास से कुछ नहीं चाहिए, सुन लो बस। तो कभी सुनना भी पड़ता है वो, इसका मतलब ये नहीं मैं दुखी हो जाऊं लाइफ में, पर उपस्थित रहना पड़ता है। और कई बार हम क्या करते हैं, अरे बाप रे अब भी वापस अपना दुखड़ा सुनाएगी, है कि नहीं, ऐसे सोचते वापस दुखड़ा सुनाएगी, तो फिर इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक प्यून था, हमेशा कंप्लेन लेके आ जाता था मैनेजर के पास। तो जो मैनेजर का प्यून था उसको मैनेजर ने एक दिन बोल के रखा था, आज बहुत फाइल है मेरे टेबल पे, प्लीज आप इसको नहीं आने देना, हमेशा मेरे को आके सुनाता रहता है कुछ कुछ। तो उस दिन बिल्कुल मना किया प्यून ने कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते साहब, बहुत बिजी है। तो भी वो बोला नहीं मैं आधी मिनट में आ जाऊंगा वापस बाहर, और घुस गया। वो देखो अरे बाप रे आ गया वापस, आज ना बोला तो भी। तो फिर उसने कहा मेरी बेटी की शादी है, मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया, आप हमेशा मेरी बातें सुनते हो ना, हर बात कोई प्रॉब्लम ही सुनाने आएगा क्या, कभी कुछ अलग भी तो हो सकता है। आपकी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और उपस्थिति के लिए क्या चाहिए, उपस्थिति के लिए क्या चाहिए, बाकी सब कुछ समेट लेना। अभी समझो एक घंटे में आपको जाना है, डिपार्चर है आपका, तो अभी क्या होता होगा अंदर, वही विचार चलते होंगे कि कब पूरा होगा तो हम पैकिंग करके चले जाएं, ऐसा थोड़ी टेंशन रहेगी, तो अवेलेबिलिटी नहीं रह सकती। आपने समेटा नहीं सब कुछ, जीवन यात्रा है ना, आपको फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, कितना किलो ले जा सकते सामान, 30, 35, 40, 40। लेकिन आज अब मुझे फ्लाइट में जाना है तो वही सामान को 40 से क्या करना पड़ेगा, 15 और 7 किलो बैग में, बस आना चाहिए ना। बोला नहीं, इतना तो सामान मेरे को ले जाना ही पड़ेगा, ले जाना ही पड़ेगा, फिर पेनल्टी होती है, आपको इतना चार्ज भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा ले जाना है तो। और कभी कभी तो कहेंगे फ्लाइट में जगह ही नहीं है, प्लीज हम ले ही नहीं जा सकते, कितना भी पैसा दे दो हम नहीं ले जा सकते, ऐसा भी होगा। तो ये भी हमारी जीवन की यात्रा है, हम रोज ट्रैवल करते हैं, तो हमको कैसा ट्रैवल करना चाहिए, रोज बोझा बढ़ाते 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 ट्रैवल करें या हल्का, क्या पसंद करेंगे, हल्का पसंद करेंगे ना। तो इसीलिए क्या करना है, रात को सोने से पहले जो एक्स्ट्रा बोझा है ना उसको योग में बाबा को दे दो, ये हो गया ये हो गया, अभी मुझको इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको समर्पित करता हूं। और उनकी कोई लिमिट नहीं, उनके पास कुछ रहता ही नहीं है, वो आप आराम से दे सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही प्रॉब्लम फ्री व्यक्ति है सदा के लिए, तो उसको सारा बोझ दे दो, अननेसेसरी जो भी हुआ है, आपको खराब लगा है, आपका मूड ऑफ हो गया है, आपको किसी के लिए ग्लानी आ रही है, सब दे दो। जो काम याद करना है दूसरे दिन के लिए, बाबा कल है ना मुझे वो चेकबुक लेके जाना है, और कल है ना मुझे पहले इधर जाना है फिर इसके पास जाना है, तो प्लीज मुझे गाइड करना। तो जो जरूरी है वो अपने साथ रखना है, जो जरूरी नहीं है डिलीट, बोझा उतार दो, दूसरे दिन एकदम फ्रेश उठो। तो आपको जो करना होगा ना उसके लिए आप अवेलेबल होंगे, नहीं तो कैसा होगा, कल अगर कुछ बोझ वाली बात है तो आज सुबह आपको मूड ही नहीं आएगा करने के लिए, और अगर वो आता है फाइल लेके तो आप बोलेंगे कल देखूं चलेगा, उस दिन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपस्थिति। तो उसके लिए कौन से गुण चाहिए, अगर मुझे 100% उपस्थित रहना है तो कौन से गुण चाहिए, जी बोलिए ना, उपस्थिति के लिए कौन से गुण चाहिए, अच्छी जगह जाने चाहिए, अच्छा हाँ क्या, एकाग्रता चाहिए, मुझे उपस्थिति के लिए क्या चाहिए ये बताओ, एकाग्रता उसके बाद आई, हल्के होंगे पहले लाइटनेस चाहिए, अगर हल्के होंगे तो उपस्थित हो सकेंगे, चार बातें और दिमाग में घुसी हुई है तो उपस्थित नहीं हो सकेंगे। दूसरा, कोई भी पूर्वग्रह नहीं, कोई भी पूर्वग्रह नहीं, तभी आप उपस्थित हो सकते हो। और कुछ और गुण याद आ रहा है उपस्थित होने के लिए, टू बी प्रेजेंट, उपस्थित रहना, अच्छा बहुत जरूरी आपको लगे कि भाई मेरे को काम आने वाली चीज है या किसी का अच्छा होने का है तो आप उपस्थित रहो, ये भी सही है, फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट। और तो इस शक्ति को कहा जाता है समेटने की शक्ति, कि आपको उपस्थित रहना है रोज तो पहले का सब समेट लो। बुद्धिजीवी लोग क्या बोलते हैं, विल लिख दिया कि नहीं, विल कर दिया कि नहीं, पहले से लास्ट तक मत रखना, विल तैयार कर दो, किसको क्या जाने वाला है, कितना जाने वाला है। माना आपने अपना सब कुछ समेट लिया, कमा रहे हो, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपको पता है लास्ट में क्या होना है। आपने अपने आप को समेट लिया है। फॉरगिवनेस इसमें आता है, भाई किसी के साथ कुछ अनबन है, दिल से योग में उसको क्षमा करो, बाबा की ओर से क्षमा मांग लो, ये भी तो समेटना हुआ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये भी समेटना हुआ। समेटेंगे तो हल्का होके चलेंगे, है ना? नहीं तो आप क्या करते हो, अपना टेंशन इस पे, उसका टेंशन उस पे, करते रहते हो सारा दिन। एक बार एक बॉस घर से निकलते पहले ही पत्नी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, इतना मूड खराब कर दिया नाना पत्नी ने बॉस का, और उसी मूड से ऑफिस चला गया। और फिर वहां सेक्रेटरी को थोड़ी देर के बाद बुलाया, टिंग टिंग, तो वो सेक्रेटरी आई तो कहता मेरे को ये फाइल अर्जेंट चाहिए, अभी लाओ। तो वो बेचारी थोड़ा सा क्या हो गया बॉस को सुबह सुबह, फिर वो निकालने लगी तो हाथ में दूसरी फाइल आ गई, और वो फाइल समझ के वो लेके गई, तो इतना जोर से फाइल को फेंका ना, तो वो सेक्रेटरी, मैंने किया क्या है, इतनी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है जो इतना उसने ऐसे फाइल भी फेंक दिया। कितना इंसल्ट फील होता है ना व्यक्ति को, छोटी सी बात थी भाई, बी की जगह ए फाइल लानी है और क्या। तो फिर वो तो चिड़के चली गई बाहर की, व्हाट इज दिस बिहेवियर। फिर बाहर चली गई, वो भी अपसेट, उसको लग रहा है कि ऐसे बिहेवियर काम कैसे किया जाए, थोड़ी तो शांति होती है कि नहीं काम करने के लिए। उसका भी मूड गया, उसका मूड गया, तो वो आधा दिन का छुट्टी करके घर चली गई। आधा दिन की छुट्टी करके घर गई, घर गई तो वहां बच्चे तो माँ 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 करके आ गए, चिपक गए उसको, माँ आज आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, जोरदार थप्पड़ दे दिया एक बच्चे को। एग्जाम चल रही है और आइसक्रीम सूझ रही है, जाओ पढ़ो सभी। बेचारे बच्चे रोते 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 घर के बाहर चले गए कि व्हाट इज दिस, एक आइसक्रीम ही तो मांगा था माँ से, तो ये क्या होता है। फिर उनको भी तो गुस्सा आता है ना, बच्चों को आता है गुस्सा आजकल, हेलो, गुस्सा आता है नहीं आता है तुमको गुस्सा? आता है हाँ, वो बच्चे छोटे थे और भी बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, तो कुत्ता आया, कुत्ते को पत्थर मारने लगे। अपना गुस्सा कहाँ उतारेंगे बच्चे, तो कुत्ते को पत्थर मारने लगे, तो वो कुत्ता भी आए 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 करके भागा भागा, गेट के बाहर भागा, वहां गाड़ी आके रुकी और एक व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला, उसके पांव को काट लिया। पता है वो कौन था? वो बॉस था। उसको रियलाइज हुआ, सेक्रेटरी को सॉरी कहने आया था। राउंड राउंड टेंशन जाके किसके पास आया? हर चीज सर्कल में, सृष्टि चक्र सुना ना कल उषा बेन जी का क्लास, सब सर्कल में है, याद रखना। आप जो करेंगे वैसा ही आपको पास वापस आने वाला है, इसीलिए अवेलेबिलिटी माना समेटना, बढ़ाना नहीं, उसको और दूसरों के पास नहीं लेके जाना, समेटना, तो हल्के रहेंगे एकदम। हाँ, और फिर योगी कैसे होगा, बोझ वाला होगा कि एकदम हल्का होगा? या तो आप योगी हो या तो आप भोगी हो, दो में से एक ही हो सकता है। भोगी सोचेगा ही नहीं, लास्ट स्टेज में अफसोस करेगा, पश्चाताप करेगा, भगवान से माफी मांगेगा, कुछ नहीं हो सकता। पर योगी जो है चलते चलते रियलाइज करता है, हर दिन रियलाइज करके अपने को चेंज करता है, इतनी अलर्टनेस होती है योगी में। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे उपस्थित रहना है तो उसके बाद एक और योग्यता आती है, भाई सामने वाला कैसा भी होगा, अगर मैंने पूर्वग्रह रखा कि मुझे ऐसे लोगों से तो बात ही नहीं करनी है, तो क्या होगा, आप उपस्थित रह सकेंगे? नहीं। और अगर समझो आपके घर के ही सदस्य है, कितना भागेंगे घर से बाहर, या तो लत पे चढ़ जाते हैं, पीना करना, स्मोक करना, ताकि वो घर की बातों का मन पे असर ही नहीं हो। पर वो तो कोई रास्ता है नहीं ऐसा, वो तो आपको और खाई में डुबो देगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया योग्यता जो हमारे अंदर है वो है सहन करना। और हम क्या कहते हैं आजकल, कितना सहन करने का, 9 बार तो सहन किया, अब 10वीं बार थोड़ी होगा। आजकल रास्ते पर देखिए कितनी सहनशीलता की कमी है, गाड़ी थोड़ी सी टकरा जाए, नहीं भी टकराए तो भी वो भाई चिल्लाना शुरू कर देता है, कितनी सहनशीलता की कमी है। तो योग्यता यूज नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट गलत ही आएगी, दुखी संसार होगा। तो अगर आपको उपस्थित रहना है तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति माना क्या, कि आप उपस्थित रहे हो ना तो आप स्वीकार कर लो, नहीं तो आप उपस्थित ही नहीं होते। अभी आप उपस्थित हुए हैं ना तो स्वीकार कर लो ना पॉजिटिवली। घर में आ गई ना, शादी हो गई ना, बच्चा हो गया ना, सास मिल गई ना, एक्सेप्ट कर लो। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे ना तो हर टाइम चिल्लाएंगे और दूसरों को जाके कंप्लेन करते रहेंगे, क्या जीवन है, कभी वो खुशी आएगी नहीं लाइफ में। और रास्ता, जीवन कोई सीधा रास्ता है कभी, बताओ मेरे को, है सीधा रास्ता, कभी सीधा रास्ता देखा है? मोड़ आएगा, ऊपर नीचे आएगा, मुंबई में आओ खड़बड़ 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 पूरे रास्तों में है, तो मुंबई का जीवन कैसा होगा, खड़बड़ 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 रास्तों के जैसा ही। तो इसीलिए जब एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो हर जगह झगड़े का मामला होगा। कहते ना एक दिन आएगा घर घर में महाभारत होगी। सालों पहले माना जाता था भारत में कि हर एक को अपने घर में गीता महाभारत रखनी चाहिए, रामायण रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला था कि हर घर में रामायण होगी, हर घर में महाभारत होगा। और वही हो रहा है क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत 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 कम होता जा रहा है। थोड़ा भी मेरे जैसा नहीं होगा ना व्यक्ति, खलास। थोड़ा भी मेरे जैसा नहीं होगा तो अरे कोई आपके जैसा मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? तो सब वैरायटी है, एक झाड़ के ही सब पान है, लेकिन एक एक पान वैरायटी है। हमको लगता है कि एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं होता है। तो हम सब एक झाड़ के पान है पर हम सब वैरायटी है। इसे ये बात दिमाग से निकाल दो कि मेरे जैसा ही होना चाहिए या मेरे को जो पसंद है वही होना चाहिए, वो दुख का कारण है। नहीं तो आप कितनों को अपना बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते? अगर आप स्वीकार करोगे तो कितने लोग आपके अपने बन जाएंगे, नहीं तो आप अकेले रहोगे लाइफ में, रहो, क्योंकि अस्वीकार ही होगा हर चीज में। और उसके लिए दूसरी क्या चाहिए, स्वीकृति के लिए, चलो एक्सेप्टेंस टॉलरेंस, हाँ उसके लिए और क्या चाहिए, नीचे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी। रबर बैंड देखे, रबर बैंड वैसे खींचते दो कितना खींचता है ना, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आजकल वो योगा करते लोग देखा है कैसे पांव ऊपर सिर पीछे ऐसा एकदम शरीर एकदम जैसे रबड़ के जैसा फ्लेक्सिबल, और किसी का देखो तो एकदम जड़ वाला हाथ होता है, जड़ वाला, थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, शरीर ऐसा कड़क क्यों हो जाता है बताओ? अच्छा एक बात है कि वो हरकत में नहीं आता है, अच्छा दूसरी बात सब साधन आने से सब चीजें इजी हो गई है तो इतनी हरकत नहीं होती है। और बताओ, और रीजन बताओ, अंदर से जिद्दी हो जाता है व्यक्ति, अंदर से वो क्या बोलेंगे कि जड़ हो जाता है, इधर जड़, और किसी का नहीं सुनेगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। इससे शरीर, ईगो से, अहंकार से शरीर जड़ हो जाता है। अंदर की, आपके अंदर की योग्यताओं से ही होता है जो भी होता है वो, तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। कहते कैंसर क्यों होता है भाई, तो जिसने कोई चीज दबा के रखी है अंदर, कोई बात जीवन की बिल्कुल लॉक करके अंदर रखी है, उसमें से निकल ही नहीं रही है, तो उसको कैंसर हो जाता है। देखो सारी बात तो आत्मा की आ गई ना, आत्मा अच्छी होगी, स्वच्छ होगी, तो शरीर भी निरोगी होगा, है ना। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी माना मोल्ड होना। हमारे में कहावत है, मुरली में आता है, जो मोल्ड हो सकता है वो रियल गोल्ड बनता है। लचीला वो रियल गोल्ड बनता है। तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको हरेक के संस्कारों को थोड़ा धीरे 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 उनके साथ काम करके उनको, अपने आप को हमें मोल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमको अच्छी बातें धारण करनी है लाइफ में, तो हमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। नहीं ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा ही चलेगा, तो फिर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहेगा, कोई आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जैसी परिस्थिति आती है, आपको डिसीशन वैसा लेना पड़ेगा जिससे आप आगे बढ़ो। तो उसके लिए मोल्डिंग नेचर बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने वो 10 बार किया है, मैं उसी में सक्सेसफुल हूं, मैं ऐसे ही करूंगा। अरे भाई, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो आपका 10 बार वाला सक्सेस नहीं चलेगा। अभी नया लाना पड़ेगा कुछ, तो उस नई दिशा में सोच देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मोल्ड होना पड़ेगा ना, भले ना आप कितने सालों के सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों नहीं होंगे, आपको परिस्थिति में मोल्ड होना पड़ेगा, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, एक बार है ना, वो मेंढक है, वो मेंढक को ना नेचर है कि अगर उसको ठंडे पानी में रखो तो भी अपना शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट करता है, गर्म पानी में रखो तो भी एडजस्ट करता है। तो उसको एक वैज्ञानिक ने रखा पॉट में पानी भर के, और फिर उसको गैस पे धीरे से चालू किया, तो अपने टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने लगा, तैरने लगा, एडजस्ट करने लगा, फिर पानी एकदम बॉइलिंग होने लगा। फिर तो बोला कि अरे ये तो मेरी बस की बात नहीं है करके वो जंप करने वाला था, लेकिन शक्ति नहीं बची, उसी में एडजस्ट कर। ये कौन सा एडजस्टमेंट है? एक तो आपको अहंकार है, मैं सब कर सकती हूं, और दूसरा फिर धीरे धीरे आप जो भी ऐसी परिस्थिति आती है उससे गलत उठाते रहते हो और अपने को भारी कर देते हो। फिर जब रियल टाइम आएगा ना उसमें से निकलने के लिए, आप बेबस। तो ऐसा भी नहीं करना है, सोच समझ के अपना रास्ता निकालना है, नहीं तो वो परिस्थिति आपको मार डालेगी। यही होता है ना, जो स्मोकिंग में जाते हैं उनको कितना समझाते हैं स्मोकिंग नहीं करो, इसके ये है, वो है, वो है, बड़ी शान से कहते हैं, हाँ हाँ पॉकेट पे लिखा हुआ है, पर फिर भी वो नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसा एडजस्टमेंट थोड़ी अच्छा है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमको चार हमारी योग्यताएं कौन सी जीवन में रोज यूज करनी है? एक तो सुनने की योग्यता, उपस्थित रहने की योग्यता, सहन करने की योग्यता, और एडजस्ट एकोमोडेट, माना अगर कोई नेगेटिव चीज भी आई तो उसको पॉजिटिव कर दो, उसको अपने लिए तो पॉजिटिव करो। जैसे उसने बोला कि वो जमीन पे कुछ उगी नहीं रहा था, फिर मैं तपोवन से बीज लाया, तो तपोवन से बीज लाया और डाला तो आ गया, इतना सारा फैल गया, ओके। तो हमको स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कुछ नया। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, सुनना, उपस्थित रहना, सहन करना या स्वीकार करना और फ्लेक्सिबल होना, मोल्ड होना, लचीलापन अपने मन की स्थिति में हो तो क्या होगा, हम चार चीजें बहुत अच्छा कर सकेंगे। पहली चीज कौन सी, हम परख सकेंगे। अगर मैंने अच्छी तरह सुना है, मैं उपस्थित रही हूं, मैंने थोड़े समय के लिए उसको स्वीकार किया और मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखी, मैंने कोई पूर्वग्रह भी नहीं रखा, फ्लेक्सिबल रही, अब मैं परख सकती हूं कि मुझे ये करना है या नहीं, मेरे लिए काम की चीज है या नहीं। तो परखने की शक्ति है कि जो हमको करना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। जैसे एक जवहरी परखता है ना, परखता है, जानवरों के साथ खेलने वाले या खेल करने वाले जानवरों को परखते हैं कि अभी इसका मूड क्या है, अभी वो क्या करेगा, वो क्या कर सकेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ऐसा परखने का। ऐसा नहीं कि करना है तो कर ही दिया बिना सोचे समझे, चलो आपके लिए कर देती हूं, आपके लिए पार्टी के लिए कर देती हूं, ऐसा थोड़ी होता है। परखना चाहिए ना कि मुझे करना है या नहीं, ठीक है। तो जब आप बनोगे ना तो आप अच्छी तरह से परख भी पाओगे। तो बनना क्या है, अच्छा सुनना है, उपस्थित रहना है, सहन करना है, मना स्वीकार करना है और लचीला रहना है, मोल्ड करना अपने आप को। फिर आप क्या कर सकेंगे, अच्छी रीति परख सकेंगे और अच्छा परखेंगे ना तो अच्छे निर्णय भी ले सकेंगे। अरे आपने जिस बात का कभी नहीं सोचा ना, ऐसा निर्णय आप लाइफ में लेंगे, आपको खुद को अचरज होगा कि मैंने ऐसा निर्णय लिया कैसे, और वो सक्सेसफुल होगा, आपने कभी नहीं सोचा वो कर पाएंगे। योग में तो इतनी नई नई आइडियाज आती है ना कि जो कुछ हमने कभी किया ही नहीं ना वो भी आता है मन में कि ट्राई करें ये अच्छा होगा, और इंट्यूशन होता है, बाबा भी ग्रीन सिग्नल देते हैं करो, और कभी ना बाबा करने नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं करने देगा बोलो ना, भगवान करने क्यों नहीं देगा, अपना फायदा नहीं है उसमें, हम उनके बच्चे हैं ना, तो अगर बच्चे का फायदा नहीं है तो बाप करने देगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचो नहीं हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मैं सक्सेसफुल क्यों, अरे नहीं करने दिया उसने वो अभी, हाँ पहले की बात नहीं बोल रही हूं, अभी पहचाना है, बच्चे बने हैं, रोज मेडिटेशन करोगे तो एक संबंध तो होगा ना, और वो संबंध से बाबा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, संबंध के बगैर नहीं लेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा किससे मिलता है फायदा, फैमिली वालों से मिलता है, या आपके बॉस अगर अच्छे हैं तो आपको फायदा मिलता है, आपका फ्रेंड अच्छा है तो फायदा मिलता है, ऐसे होता है ना, हर जगह थोड़ी फायदा मिलता है। ऐसे ही जब आप बाबा को अपने लिए रिस्पॉन्सिबल लेंगे और आप ये योग्यताएं आत्मा की यूज करेंगे, तो अगर काम नहीं हुआ ना तो आपके मन में आएगा बाबा कोई कारण होगा। ऐसे कितनी बार लाइफ में हुआ, अभी अगर अनुभवों का चालू करूंगी ना तो रात तक चलेगी बात, इतने अनुभव होते हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, लेकिन फिर समझ में आता है हाँ इसीलिए देरी से। बहुत बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा बहुत करते हैं बाबा गंदी चीजों से, नेगेटिव चीजों से, जो मुझ आत्मा को वापस नीचे गिराएगी वो सब चीजों से बाबा बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। रक्षा बोला गया है ना भगवान को, तो अनुभव करना चाहिए ना अधिकार से, वैसे भी वो करते हैं, अगर आप उनको नहीं पहचानते हैं ना तो भी वो कई बार रक्षा तो करते हैं, पर हमको फिर भी मन नहीं होता, हम उनको पहचाने तो सही, उन्होंने रक्षा की, पहचाने तो सही कौन है, फिर जो एड्रेस मिला ना वहां जाके थैंक यू बोल दिया, ऐसा होता है, समझा। तो आपका निर्णय भी सही होगा, और जो आप निर्णय लोगे ना उसकी जिम्मेवारी की फीलिंग आपको बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका निर्णय नहीं है तो आप कभी रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहां अपने भाई को साथ में लाया है कि चलना मेरे को जाने का है तो आ मेरे साथ, वो कह ठीक है चलो, ध्यान ज्यादा कौन देगा, भाई या जो आया है वो? भाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका निर्णय नहीं था या आने का। और कभी कभी कोई निमित्त बन जाता है लाने में, और जो निमित्त बनता है वो पीछे रह जाता है और आने वाला बहुत आगे चला जाता है, ऐसा भी होता है ना। तो इसीलिए फायदा होगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, है ना, आप रिस्पॉन्सिबल फील करोगे कोई भी चीज करने के लिए। हम कितनी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, सोचो जीवन में कितनी परिस्थितियों में आपने कभी जिम्मेवारी नहीं ली है? कोई ऐसा जो जिसने हमेशा जिम्मेवारी ली, हाथ खड़ा करे, जो कहता नहीं मैंने लाइफ में तो हमेशा जिम्मेवारी ली है, क्योंकि हर एक ने किसी और ने ही बोला है आपको करने के लिए, आपके मन से नहीं हुआ है, आपके मन से निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती है। आपका जो डिसीजन होगा ना तो आप 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर क्या करना पड़ता है? रिस्पॉन्सिबल तो हो गए तो उससे क्या होता है, क्या गुण आते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में गुण है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से और गुण कौन से आते हैं? और गुण कौन से आते हैं? रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है ना तो उसमें और गुण कौन से होते? पहल करेगा, इनिशिएटिव लेगा, और बताओ, डिसिप्लिन होगा, और बताओ, लीडरशिप होगी, और बताओ। लीडरशिप माना कौन सी लीडरशिप? सबको साथ में ले जाने की या बॉसिंग करने की? अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये तो आज के लीडर बॉसिंग ज्यादा करते हैं। हाँ, और बताओ, और बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का भाव होगा, है ना, तो कितना अच्छा है। तो इसीलिए आत्मा के नजदीक हो जाता है वो, फिर नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। जो पहले ना डिसीजन मेकिंग से शुरू करता है चक्र, ये चक्र देखा ना आपने, अगर कोई कहता मैं बॉस हूं, मैं डिसाइड करूंगा जो भी होगा, घर में कौन सा पेंट होगा, कौन सी चीज आएगी, कहां खिला ठोकना है, मैं बोलूंगा, फिर क्या होगा? तुम परखो, तुम मोल्ड हो जाओ, तुम सहन करो, तुम्हें उपस्थित रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा सुनना पड़ेगा, चक्र उल्टा जाएगा। पर अगर आप सुनने से शुरू करेंगे तो आप एक रियल लीडर बन सकते हैं, कितनों को आप अपने साथ ले जा सकते हैं साथ में। क्योंकि एक सच्चा लीडर है ना, वो जानता है कि एक हाथ से काम नहीं होता है। वो लड्डू की बात वो भाई ने सुनाई थी ना, पांच उंगलियों से लड्डू बनता है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने डिसीजन लिया है, सही है, अकेले करके दिखाओ, होगा? कभी नहीं होगा, आपको कोई और चाहिए, दो चाहिए, फिर चार चाहिए, फिर छह चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी कार्य कॉर्पोरेट कोऑपरेशन के बिना, सहयोग के बिना नहीं होता है। तो ये भी हमारे अंदर की योग्यता है। हम लेना तो बहुत चाहते हैं लेकिन देना बहुत कठिन हो गया है, फिर चक्कर उल्टा चलेगा अगर आप लेते रहोगे तो। अगर चक्कर सीधा चलाना है तो आपको देना सीखना होगा, देंगे तो आपको टाइम पे मिलेगा भी। ये यूनिवर्स का लॉ है, भगवान का लॉ नहीं है, यूनिवर्स का लॉ है कि अगर आप दोगे तो एक दिन आपको मिलेगा भी, सुना? तो इसीलिए अगर हम इस चीजों से, जैसे यहां लिसनिंग, अवेलेबिलिटी, टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट माना हर एक के अंदर वो एनर्जी है पूरे टीम में, ऐसा नहीं हाँ बैठे वो जब बोलेंगे तब देखा जाएगा, चलना चाय पकौड़ी लेके आ, ऐसे भी होते हैं टीम वाले। देर ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट वन पर्सन, एक ही व्यक्ति पे डिपेंड होते हैं। माँ है तो घर में सारा काम माँ ही करेगी, और कोई कुछ करेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, एक से होता है क्या कभी कुछ? सबके सहयोग से स्वर्ग होता है, फिर घर हो, ऑफिस हो या पूरा विश्व क्यों ना हो, सबके सहयोग से होता है। इसलिए टीम स्पिरिट भी उतनी ही बहुत वंडरफुल बात है, साथ में रहना, अप्रिशिएट करना एक दूसरे को। इस बार नहीं, वो स्पेस में वो नहीं गया, कौन सा था वो अपना सैटेलाइट, नहीं सैटेलाइट तो स्पेसशिप नहीं गई ना, स्पेसशिप कौन सी थी वो नहीं गई, फिर फेलियर हो गया तो सुब्रमण्यम जी बहुत रोने लगे, तो चंद्रयान दो, फिर आए अपने लीडर साहेब नरेंद्र मोदी, उसने क्या किया, आके उसको गले लगाया। अब्बा छड़ी लेके भी आ सकते थे, निकाल भी सकते थे उसको, हायर एंड फायर, नहीं किया गेट आउट, उसने क्या किया, अरे भाई तुम्हारा अकेले का कारण नहीं है, है ना, फिर से ट्राई करना, फिर से होगा। एक सेकंड में उसका रोना बंद करा दिया, क्योंकि व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत टूट जाती है ना ऐसा कुछ होता है तो। हाँ, तो उस समय कोई चाहिए ना ऐसा जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे, कि भाई तुमने जो किया है वो फेलियर नहीं है। थॉमस एडिसन ने 2000 प्रयोग किए तब जाके बल्ब बना। तो मीडिया ने पूछा कि तो आपको खराब नहीं लगा 2000 बार बल्ब ही नहीं बना आपसे? बोला नहीं, मेरे को पता चला कैसे कैसे बल्ब नहीं बन सकता है, मैं तो सीखा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। समझा, सीखना। एक बार कॉलेज पूरी हो गई फिर सीखना बंद हो जाता है, भाई सिखाऊंगा मैं उसको दिखाऊंगा, बस यही चलता है। वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, तो अगर हम इस साइकिल को अच्छी तरह अपने लिए फिट बैठाएंगे ना, तो अपनी सारी शक्तियां टाइम पर बाबा की याद में काम आएगी। और ये आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां भी है, और आपने जितने भी गुण बोले ना वो सब गुण भी आत्मा के अंदर है, बाहर किधर भी नहीं है, चौपड़ी में नहीं है, बुक में नहीं है, वो सब हमारे अंदर है, जीवंत है। इसलिए मेडिटेशन, अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ, और फिर सीधा बोलो मैं शांत स्वरूप हूं, मैं डिटर्मिंड हूं, मैं दृढ़ता संपन्न हूं, मैं हिम्मतवान हूं, मेरे में परखने की शक्ति है, ऐसा सीधा बोलो, टेढ़ा मेढ़ा मत बोलो। और अगर मैं परखता तो कितना अच्छा होता, पहले से ही आप जो हो ना वो ही सोचो, जो नहीं हो वो नहीं सोचो। दिस इज द एसेंस ऑफ राजयोगा, आप जो हो वास्तविक वो ही सोचो। आत्मा में हिम्मत है, कौन बोलता है नहीं है आत्मा में हिम्मत? आप में नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा में तो है ना। आप मना क्या, बॉडी कॉन्शियस में आपको हिम्मत की कमी फील हो सकती है, लेकिन जब आप आत्मा समझ के चलते हो तो आत्मा में तो हिम्मत है। इसलिए नहीं ऋषि मुनि जंगल में बैठते थे तो शेर वगैरह सब बैठ जाते थे आराम से आजू बाजू में। इट इज प्रूविंग कि आत्मा में हिम्मत है। तो अपने को क्या समझो, मैं कौन हूं? शक्तिशाली आत्मा और किसकी संतान? सर्वशक्तिवान की। अगर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं तो मैं किसकी संतान हूं? मैं प्रेम के सागर की संतान हूं। प्यार के सागर का गीत है ना, तू प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर है तो मैं थोड़ी नफरत वाली हूं, मैं उनका बच्चा, प्यार का स्वरूप। थिंकिंग बदलोगे ना, बदलोगे ना, कितना भी दुश्मन साथ में क्यों नहीं रहता हो, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। चैलेंज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कि नहीं अभी बहुत आयु हो गई, अब ये सब काम हमसे नहीं होगा। हैं, आत्मा की कभी आयु होती है क्या? आत्मा की कभी आयु होती ही नहीं है। आपको जॉब करना हो आप कर सकते हो, इतनी छोटी सी बात भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? मैं चैतन्य आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, प्रेम स्वरूप हूं, मैं प्यार के सागर की संतान हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर रोज करना इंपॉर्टेंट है तो बहुत फर्क आएगा। ओके, ये है वैल्यूज एंड पावर्स थ्रू राजयोग का। रोज राजयोग का अभ्यास करेंगे तो ये आठ चीजें, आठ शक्तियां और अनेक गुण आपके अंदर है ही, वो यूज होने में आ जाएंगे। आपको मन होगा कि मैं यूज करूं, मैं अपने खजाने को यूज नहीं करूंगा तो क्या दूसरे से लोन पे लूंगा? ये तो मिलेंगे नहीं। जब आपको हिम्मत चाहिए ना, कोई नहीं देता, पर आप किसी को हिम्मत दे सकते हो, ये सर्टन बात है। ठीक है, डन। ये लिसनिंग अवेलेबिलिटी, ये सब उसके डेफिनेशन दिए गए हैं। बस ओम शांति। तो हम कैसी आत्मा है? जिस आत्मा में शक्तियां, गुण और श्रेष्ठ वृत्तियां समाई हुई है, उसको पहचानना है, बार बार स्मृति में लाना है योग से, और फिर उसको यूज करना है, है ना? कभी भी आए ना मैं दुखी हूं, तो फिर से सोचो आत्मा में दुख है? नो, आत्मा कैसी है? सुखी। दुखी मैं क्यों हूं? परिस्थिति ने मुझे ऐसा बना दिया। मुझे परिस्थिति नहीं, मैं आत्मा कैसी हूं? सुखी हूं। तो सुख की शक्ति से दुख को खत्म करो। ठीक है, ओके, ओम शांति। हाँ हाँ, बोलिए ना। पर अपन कल देखे थे ना सुबह के इसमें, और अभी भी हम बिगिनिंग में कैसे बैठे थे, परम धाम तक गए, फिर आए आए ना, इसी में ये सब चीजें ऐड करनी है, उसी में ये सब चीजें ऐड करनी है। जब परम धाम जाओ तो बाबा से क्या बातचीत करेंगे? देखो पहले यहां पर फिजिकल नहीं, मन से करना है, फिजिकल नहीं, मन से, कि मैं कहां बैठा हूं शरीर में, दो आंखों के पीछे, भ्रुकुटी जिसको कहा जाता है, मस्तिष्क के आगे, आंखें खोल के करना है, क्योंकि हम अपनी सोच को काम में ला रहे हैं, सोच को, तो सोच के लिए आंखें बंद नहीं, नींद के लिए आंखें बंद होती है। हाँ, आप अभी दिलवाड़ा में क्या देख के आए? दिलवाड़ा गए सभी? वहां योगी बैठे थे, आंख बंद थी खुली थी? फिर ध्यान करने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, सोने टाइम आंख बंद करने का। पर जैसे अपने ये जो इतने युगों पहले की बात है, वहां तो आंखें खुली है, सारे देवी देवताओं के मंदिर देखो आंखें खुली है, वो सब योगी है। बाकी जो संतों ने शुरू किया वो उनकी थियरी है। मन भागता इधर उधर, नींद तुरंत आ जाएगी क्योंकि सिग्नल मिलेगा ब्रेन को, आंखें बंद हो गई है, तो ब्रेन में क्या है आंसर? सो जाओ। या आप डरोगे ना किसी से, ऐसे हो जाएगा, डरते तभी आंखें बंद होती है। योग में सदा आंखें खुली, आंखों को भी हमें रिफ्रेश करना है, आंखों को हमें प्योर करना है, दृष्टि को बदलना है कि कोई सामने आए तो हमारी दृष्टि से उसके वृत्ति में परिवर्तन हो जाए। वो धीरे धीरे, आप रोज क्लास में जाएंगे ना सेंटर पे, तो वो जो क्लासेस चलती है ना वो आपको सिखाती जाएंगी कैसे बाबा से बात करनी है। इट्स अ प्रोसेस, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कैसे बाबा से. फर्स्ट खाली इतनी बात कि मुझे बाबा से कंप्लेन करने के लिए नहीं मिलना है, प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं मिलना है, मुझे मिलना है प्यार के लिए, मुझे मिलना है ज्ञान के लिए, मुझे मिलना है आनंद के लिए, मुझे मिलना है शक्तियों के लिए. पहले ये थॉट क्लियर होना चाहिए तो आपकी बातचीत भी उसी आधार से होगी. पर सबको, हर एक आत्मा की अपनी बातचीत होती है ना बाबा से. तो मैं जब जाती हूँ बाबा के सामने, पहले तो मैं बहुत उनको निहारती हूँ अपने मन और बुद्धि के नेत्र से, क्योंकि वैसे भी नहीं देखने आने वाले है ना इन आंखों से. तो मैं मन बुद्धि की आंखों से उनको बहुत निहारती हूँ परमधाम में, और फिर बाद में धीरे से मैं बाबा से बात करती हूँ कि बाबा आप कितने मीठे हो, मैंने कभी नहीं समझा कि आप इतने लवली हो, आप सबसे सुंदर हो. ये मेरी रीत है बात करने की, कि मैं तो शरीर में ढूंढ रही थी और वो सब तो आपने मिला और आप मुझे भी ऐसा बना रहे हो. कभी स्वप्नों में भी ऐसा नहीं सोचा था बाबा, सच्ची एकदम जैसे अपना निकट का कोई होता है ना, ऐसे बातचीत करते. और बाबा रिस्पांस भी देते कोई ना कोई रीति से देते. हाँ. शिव बाबा से लो ना पहले, शिव बाबा से लेके आंख खोल. हाँ, आंख खोल के, ताकि आपकी दृष्टि से जो वाइब्रेशन आते हैं वो सारे अनाज को मिले. कभी कभी ऐसे भी बैठ सकते हैं आप, आंखें खोल के हाथ ऐसे, तो आंखों से भी जाता है हाथों से भी जाता है. ऐसे हम टच करते हैं ना प्लांट को हाथ से, स्पर्श, उसको वाइब्रेशन मिलता है. देवियां कैसे रखती है हाथ, तो हम क्या सोचते हैं वो हमको क्या दे रही है, देवी क्या दे रही है, ऐसे होते आशीर्वाद दे रही है, वरदान दे रही है. तो योग के द्वारा हम इतने ऊंचे वाइब्रेशन सारे खेत को भी दे रहे हैं. और उस समय भी आप यही सोचो कि बाबा से ले रहा हूं और दे रहा हूं, अपने ऊपर इतना लो ही नहीं. जैसे वो आप बनाते हो ना चैनल, बनाते हो ना वो कनाल, वहां से ऑटोमेटिक पानी आता है ना, ऐसे बाबा कनाल है और उनसे आ रहा है और हमारे द्वारा पूरे खेत को जा रहा है. तो कभी आपको बोझ ही नहीं फील होगा, मैं कर रहा हूं उसी का कितना बोझ होता है. वो बाबा के द्वारा हो रहा है, मैं निमित्त हूं, तो इजी हो जाता है. और वो अखंड है ना, वो उसमें कभी कमी नहीं आएगी. और प्रकृति का आजकल देखो बहुत प्रकोप भी है कि नहीं प्रकोप, कभी बारिश बहुत तेज आती है, कभी बिल्कुल नहीं कुछ होता है. तो उनके लिए भी योग करो, प्रकृति के पांच तत्वों के लिए भी योग करो. बाबा से शक्ति लो, शांति लो, शुद्धता लो और उनको भी दो, तो आपको टाइम पे प्रकृति भी मदद करेगी. वैसे तो आप लोग करते हो, सूरज का भी करते हैं आप, जल का भी करते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट वृत्ति नहीं रहती है. इसलिए कांस्टेंट वो वृत्ति रखना बहुत जरूरी है पांचों ही तत्वों के लिए. आधा तो आपका है ही है, नेचुरल है आप लोग का, पर अभी बाबा के द्वारा और ज्यादा हो जाएगा. फिर अगर समझो बाढ़ भी आती है ना, तो आप किसी को मदद कर पाएंगे. आप में नेगेटिव थॉट नहीं है ना, बाढ़ आ गया क्या होगा, आप दूसरों को मदद करेंगे उसमें. वो बाढ़ भी आपको दुश्मन नहीं लगेगा, ऐसा होता है राज्यों के अभ्यास से, बाढ़ भी दुश्मन नहीं लगती है. कोई ना कोई कारण से आई है ना, किसी ने डिस्टर्ब किया ना, किधर डिस्टर्ब किया तो इधर बाढ़ आ गई, क्या करे. तो उसका दोष है क्या? दोष नहीं। तो जिसका दोष नहीं है उसके ऊपर दुखी होना, क्रोधित होना, वो गलत बात हो जाती है। अच्छा बहुत हो गया, फिर तो बहुत लंबा चलेगा। ओके, तो जो भी लिया है वो बूंद मात्र लिया है, क्योंकि एक बार सुनने में सारा नहीं आता है। अभी तो आपने केवल बूंद ली है, बूंद। सेंटर से कनेक्टेड रहोगे और ऐसे सुनते रहोगे तो धीरे धीरे बूंद बूंद से सरोवर बनेगा। ठीक है, ओम शांति। चलो एक मिनट वापस, विदाउट सॉन्ग, विदाउट म्यूजिक, विदाउट रेड लाइट। खेत में कौन सा रेड लाइट होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए नेचुरल बैठेंगे और बुद्धि से सब कुछ समझना है। कहीं भी सामने देखो, भले पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कहीं भी, और उसी पॉइंट पे अपनी आंखों को स्थिर करने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए इधर उधर कुछ नहीं, बस एक पॉइंट पे एकाग्र। अब उस पॉइंट से डायरेक्शन बदलो और अपने अंदर के आत्मा स्वरूप के पॉइंट पे आओ। और अपनी चैतन्य स्वरूप को देखो। अब पता चला कि अरे मुझे आत्मा को तो रोज चार्जिंग करना है, नहीं तो मैं और दुखी और अशांत होता जाऊंगा। तो चलो हम बाबा के पास जाते हैं, सूर्य चांद तारागण अवकाश से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी परे, अपने आत्मिक धाम में बाबा के सामने, और उनका तो स्विच ऑन ही है देने के लिए, बस हमको उपस्थित रहना है। संकल्पों से खुले दिल बैठना है बाबा के साथ। और अब प्यार से अंदर से बाबा को आभार मानना है। हर चीज के लिए, स्थान के लिए, यहां की हवाओं के लिए, खान पान के लिए, रहन सहन के लिए, और सबसे ऊंची चीज परमात्मा के ज्ञान के लिए। अब वापस सूक्ष्म लोक से होते हुए, अवकाश से होते हुए, सबको बहुत अच्छी भावना देते हुए आकाश में नीचे की ओर सबको बहुत शुभ भावना देते हुए फिर से माउंट आबू ज्ञान सरोवर के ऊपर, फिर से ये बिल्डिंग के अंदर अपनी सीट पे शरीर को बिठाया है, शरीर के अंदर रुकटी में बैठ जाइए। ओम शांति।